आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? मेरा नाम अमन है। तो बच्चों, आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने काफी चैप्टर अपना कवर कर लिया था, हमने लास्ट ऑडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, लीवर, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज दी फंक्शन ऑफ सलाइवा, उससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी पढ़ी थी। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हमने हमारी पिछली क्लास में कवर कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी जल्दी से साइंस की बुक्स निकाल लीजिए एंड ओपन करिए पेज नंबर 17। तो बच्चों, हमने लास्ट ऑडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है एंड ये 7.5 यानी कि 7.5 मीटर लंबी एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्टार्टिंग में स्टमक के साथ कनेक्टेड होती है एंड जहां पर वो खत्म होती है उधर वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ यूनाइटेड होती है, यानी उसके साथ वो जुड़ी हुई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा खाना काफी हद तक डाइजेस्ट होता है, इसीलिए वहां पर डाइजेस्टिव जूसेस की जरूरत होती है। बच्चों, वो डाइजेस्टिव जूसेस अलग अलग ग्लैंड से सेक्रीट होते हैं, जो कि हमने लास्ट ऑडियो में पढ़ा था, लीवर, पेनक्रियास, इनके द्वारा जो सेक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, वो मदद करते हैं डाइजेशन के अंदर। किस पार्ट में? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है, और इन दोनों का ही अपना अलग अलग फंक्शन है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने हमारे पिछली ऑडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 17 पे, एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रीडिंग करेंगे। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. तो बच्चों, starting की 3 lines को आप pencil से mark कर लीजिए. It is the definition of absorption. Very important. आगे चलते हैं. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. तो बच्चों, इस लाइन को भी मार्क कर लीजिए. This indicates the function of villi, कि villi का हमारी intestine के अंदर क्या रोल है. Please इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए. Next. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर ब्लड ट्रैवल करता है थ्रू आउट दी बॉडी, और हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाता है, यानी पच जाता है। तो खाने के पचने के बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स है, जो अलग अलग तत्व है, वो कहाँ जाते हैं? एक्चुअली वो हमारी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी हमारे खून के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, खून के अंदर घुल जाते हैं। और खून क्या करता है, हमारा ब्लड उन न्यूट्रिएंट्स को, उन तत्वों को हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक उसको पहुंचा देता है। तो इसी तरीके से जो भी पचा हुआ खाना होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर करता है। कहां से? वाया द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो अंदर की वॉल्स है, दीवारें हैं, वहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा पचा हुआ खाना, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे ब्लड वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी इनर वॉल यानी अंदरूनी जो दीवारें होती है उसके ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं उस सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। प्रोजेक्शंस माने छोटे छोटे पतले पतली कलियां होती है, हम इसको सरल भाषा में कलियां भी कह सकते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, इनको हम विलाय बोलते हैं। ये विलाय क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है यानी जो हमारा पचा हुआ खाना है वो अच्छे तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने आपको रीडिंग करते समय विलाय का फंक्शन भी अंडरलाइन करवाया था, द विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और जब विलाय फूड को एब्जॉर्ब कर देती है तो विलाय के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, पतली पतली ब्लड वेसल्स। जैसे ही विलाय एब्जॉर्ब करेगी फूड को, वो खाना एब्जॉर्ब हो रखा फूड विलाय ट्रांसफर कर देती है टू दी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के द्वारा वो एब्जॉर्ब्ड फूड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ट्रेवल करता है। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल के अंदर जो एब्जॉर्ब हो रखा खाना है उससे जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, डेट इज प्रोटीन्स, जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यानी जब हमारी बॉडी एब्जॉर्ब खाने को, पचे हुए खाने को इस्तेमाल करके कुछ ऐसे तत्व बनाती है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो बच्चों, जो पचा हुआ खाना था उसमें से जो भी आवश्यक चीजें थी, जिस भी चीज की बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, वो सब कुछ तो विलायज ने यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जो बचा हुआ खाना है यानी अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, जो कि ना डाइजेस्ट हो पाया है ढंग से और ना ही उसकी एब्जॉर्प्शन हो पाई है, वो सारा का सारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रेवल करता है, यानी उसका सफर स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे बढ़कर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चलिए हम इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डेट इज लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। बच्चों, लास्ट की 3 लाइंस को अगेन पेंसिल से मार्क कर लीजिए जो कि डेफिनेशन है इजेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी सी चौड़ी यानी वाइडर होती है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटी होती है, डेट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1.5 मीटर, डेट इज 1.5 मीटर, और इसी के कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमने पढ़ी थी 7.5 मीटर्स। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख ही सकते हैं। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन तो होता है डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना, उसी के कंपैरिजन में लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है पानी को एब्जॉर्ब करना, यानी हमारे खाने के अंदर जो भी वाटर प्रेजेंट है या फिर सॉल्ट प्रेजेंट है उन सभी चीजों को हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो भी बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है यानी सब कुछ एब्जॉर्ब और सब कुछ डाइजेस्ट होने के बाद जो रह गया यानी जो हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं उसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, और ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम तक ट्रांसफर हो जाता है और सेमी सॉलिड फीसिस की फॉर्म में वहीं पर थोड़े टाइम रहता है। सेमी सॉलिड फीसिस माने इट मींस ना ही वो पूरा सॉलिड हो और ना ही पूरा लिक्विड। इस बचे हुए खाने को हम फीकल मैटर या फिर फीसिस भी बोलते हैं। ये फीकल मैटर उसके बाद एनस के थ्रू हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम रिमूव होता है, और इस रिमूवल प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, यानी अनडाइजेस्टेड फूड डेट इज वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम समय के साथ रिमूव होना, एंड उस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन। तो बच्चों दिस वॉज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसी के साथ आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है। अगर आप पेज नंबर 17 पे नीचे ब्लू बॉक्स में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डायरिया, तो चलिए इसको रीड करते हैं। समटाइम यू मे एक्सपीरियंस द नीड टू पास वॉटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया, इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। It is very common in India, particularly among children. Under severe conditions, it can be fatal. This is because of the excessive loss of water and salts from the body. Diarrhea should not be neglected. Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. This is called oral rehydration solution, जिसको हम ORS भी बोलते हैं। तो बच्चों आपने सुना ही होगा, कभी कभी हम कहते हैं हमारा पेट खराब हो गया है, जिसको हम सही मायने में डायरिया बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, नॉर्मल इंसान में फीकल मैटर सेमी सॉलिड कंडीशन में रिमूव होता है, लेकिन जो पर्सन डायरिया से परेशान हो उसकी बॉडी से वाटरी स्टूल्स यानी टोटल लिक्विड फॉर्म में फीकल मैटर का इजेक्शन होता है, जिस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं। ये प्रॉब्लम आइदर फूड पॉइजनिंग या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर अगर हमारा खाना सही ढंग से ना डाइजेस्ट हो रहा हो तो उस केस में ये डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जिस भी पेशेंट को डायरिया की प्रॉब्लम होती है उसकी बॉडी के अंदर लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स माने पानी और नमक की कमी हो जाती है, क्योंकि एक्सेस ऑफ वाटर उसकी बॉडी से रिमूव होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटरी स्टूल्स। डायरिया की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं, वो उबला हुआ पानी और उसके अंदर नमक या फिर चीनी का घोल बनाकर देने के लिए रिकमेंड करते हैं, जिसको हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि डॉक्टर कई बार छोटे बच्चों को यानी इन्फेंट्स को ORS का घोल देते हैं, तो बच्चों वो इसी कंडीशन में दिया जाता है। तो अब आपने डायरिया की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है। तो अगर आपके आसपास या आपकी नजर में कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो कि इस कंडीशन में हो, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ऐसी कंडीशन में पानी के अंदर नमक और चीनी का घोल बनाकर दिया जाता है, ताकि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो पानी की और नमक की कमी हो रही थी वो पूरी हो जाए। तो आप इस नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में जरूर यूज करना। तो चलिए, हमारा अगला टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोस एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कॉन्टिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। तो बच्चों, आप सभी इस पैराग्राफ के आगे एक स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि गायें या फिर भैंस, काओ, बफेलो, आपने देखा होगा कि ये पूरा दिन अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा ही चबाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि ये पूरा दिन ही क्या चबाते रहते हैं? इनका मुंह पूरा दिन ही कॉन्टिन्यूसली क्यों चलता रहता है? हम भी तो इंसान हैं, हम तो खाना खाते हैं और उसी समय खाकर हमारा मुंह बंद हो जाता है, लेकिन इन एनिमल्स का मुंह क्यों नहीं बंद होता? ये पूरा दिन ही कॉन्टिन्यूसली च्यू करते रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे एनिमल्स जब एक बार ग्रास खाते हैं तो ये एक्चुअली उसको अच्छे तरीके से नहीं खाते, ये बस सीधा ही उसको स्वेलो कर लेते हैं, यानी निगल लेते हैं। अब उन्होंने वो ग्रास निगल ली, वो सारा का सारा फूड उनका स्टमक के एक पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है, जिस पार्ट का नाम है र्यूमन। आप फिगर 2.9 में भी देख सकते हैं, ऑन पेज नंबर 18, आपको काओ की बॉडी के अंदर स्टमक का एक पार्ट नजर आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं र्यूमन। स्टमक के इस पार्ट के अंदर जो भी खाना होता है वो पार्शियली यानी आधा अधूरा डाइजेस्ट हो जाता है, और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं कड, CUD। लेकिन बाकी पूरा दिन वही आधा पचा हुआ खाना वापस से माउथ के अंदर री एंटर होता है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में अगेन ट्रेवल करके माउथ में आता है, छोटे छोटे लम्स में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। ये वापस से सारी की सारी पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास वापस से माउथ के अंदर आती है और ये एनिमल्स उनको अच्छे तरीके से च्यू करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन। जिस एनिमल के अंदर ये र्यूमिनेशन प्रोसेस होता है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं र्यूमिनेंट्स। चलिए आगे रीड करते हैं। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Animals like horses, rabbit, etc., have a large sac-like structure called caecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria, which are not present in humans. तो बच्चों, इन एनिमल्स की स्टमक में एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोस यानी जो भी ये ग्रास खाते हैं उनके अंदर सेल्यूलोस नाम का एक तत्व प्रेजेंट होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही एग्जाम्पल है। इस सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने में ये बैक्टीरिया हेल्प करता है। हम जैसे जो इंसान है हम इस सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं ये इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इनकी स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। उसी तरीके से हॉर्सेस रैबिट ये जो एनिमल्स है इनके पास भी एक सैक लाइक यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कैकम, जो कि ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। अगेन इसके अंदर भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि सेल्यूलोस की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। देन How do they acquire and digest food? In the section below, you will learn another interesting way of food intake. तो बच्चों, हमने humans और कुछ animals के digestive system को तो पढ़ लिया कि किस तरीके से उनकी body में खाना digest होता है। लेकिन ऐसे organisms जिनके पास ना ही mouth है और ना ही well-defined digestive system है, उनकी body के अंदर किस प्रकार से डाइजेशन होती है, तो चलिए ये पढ़ने के लिए हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड many small bubble-like vacuoles. In its cytoplasm, amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. तो बच्चों, amoeba एक microscopic single-celled organism है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के देखने से ही दिखाई देता है। सिंगल सेल्ड का मतलब ये एक अकेला एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है। दूसरी बात, ये पॉन्ड वाटर के अंदर पाया जाता है। अमीबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि राउंडेड शेप में होती है। इसके पास डेंस न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे छोटे छोटे बबल यानी गोल गोल वैक्यूल्स होती है जिसके अंदर खाना स्टोर होता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म माने सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है हम उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो उसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म बार बार अपनी शेप को चेंज करता रहता है जिसकी मदद से ये बार बार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी एक ऐसी शेप बना लेता है जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, जिसकी मदद से ये अपनी मूवमेंट करता है और दूसरा फूड को कैप्चर कर लेता है यानी अपने खाने को पकड़ लेता है। जैसा कि आप फिगर नंबर 2.10 में देख सकते हैं, अमीबा के फिगर के अंदर ये सेल है जो कि सिंगल सेल है। यहाँ पर इसकी एक ब्लैक कलर की सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक ब्राउन कलर का न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ ही छोटे छोटे डार्क ब्लू कलर के फूड वैक्यूल्स हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। इसी के साथ ये अपनी शेप कुछ इस प्रकार बना लेता है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। इसी सूडोपोडिया की मदद से ये किसी भी फूड पार्टिकल को घेर लेता है और घेरने के बाद उसको कैप्चर कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। तो बच्चों, नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। व्हेन इट सेंसेस फूड, इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी अपने साइज से भी छोटे ऑर्गेनिज्म को ये अपना शिकार बनाता है। ये एक अलग सी शेप बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, जो कि फूड पार्टिकल के आसपास एक घेरा बना लेती है और कुछ ही टाइम बाद ये उस फूड पार्टिकल को निगल जाता है, अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप कर लेता है। किसके अंदर? एक पार्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लीकेशन। The undigested residue of the food is expelled out by the vacuole. तो बच्चों, एक बार जब खाना food vacuole के अंदर trap हो जाएगा, तो उसी vacuole के अंदर अलग-अलग प्रकार के digestive juices secrete होना start हो जाते हैं। ये digestive juices खाने को अच्छे तरीके से digest कर देते हैं और उसको absorb कर लेते हैं। उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स या फिर जितने भी सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं, उसकी मदद से ये ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करता है, अपनी बॉडी को मेंटेन करता है एंड मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करता है, जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एंड इवन जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो खाना पच नहीं पाया, वो खाना इनकी बॉडी से एक्सपेल आउट यानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जिसका ना तो मुंह है ना ही कोई पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर इस प्रकार से डाइजेशन होती है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम टू ऑल एनिमल्स। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. सभी जीव जंतुओं यानी animals के अंदर जो digestion process है और उस digested food से जो energy की formation होती है, वो process सभी के अंदर same है। तो इसी के साथ आपका chapter nutrition in animals खत्म होता है। तो बच्चों, अब आपने क्या करना है, आपने इस चैप्टर की अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है और उसी के साथ मैंने जो पेंसिल से अंडरलाइन करवाया है या फिर स्टार मार्क करवाया है, आपने उन चीजों को अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम हमारी बैक एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।